भक्तितः तत्ते संपादये कामम् असतीनां च असतीनां सुदुर्लभम् असतीनां सुदुर्लभम् दितिरुवाच वरदो यदि मे ब्रह्मान् पुत्रम् इन्द्रहनं वृणे अमृत्युं मृतपुत्राः येन मे घातितौ सुतौ निशम्य तद्वचो विप्रो विमनः पर्यतप्यत अहो अधर्मः सुमहान् अद्य मे समुपस्थितः अहो अद्येन्द्रियारामो जोषिन्मय्येह मायया गृहीतचेता कृपणः पतिष्ये नरके ध्रुवम् कोटिक्रमोऽनुवर्तन्त्यः स्वभावमिह योषितः धिङ्मां बता बुधं स्वार्थे जदहं त्वजितेन्द्रियः शरत्पद्मोत्सवं वक्त्रां वचश्च श्रवणामृतां हृदयं क्षुरधाराभां स्त्रीणां को वेद चेष्टितां नहि कश्चित् प्रियः स्त्रीणां अञ्जसा स्वाशिषात्मनां पतिं पुत्रं भ्रातरं वा घ्नन्त्यर्थे घातयन्ति च प्रतिश्रुतं ददामीति वचस्तन्न मृषा भवेत् वधं नार्हति चेन्द्रोऽपि तत्रेदम् उपकल्पते इति संचिन्त्य भगवान् मारीचः कुरुनन्दन उवाच किञ्चित् कुपित आत्मानं च विगर्हयन् कश्यप उवाच पुत्रस्ते भविता भद्रे इन्द्रः देव बान्धवः संवत्सरं व्रतमिदं यद्यञ्जो धारयिष्यसि दितिरुवाच धारयिष्ये व्रतं ब्रह्म ब्रूहि कार्याणि यानि मे यानि चेह निषिद्धानि न व्रतं घ्नन्ति यानि तु त्वया तुम्हारे द्वारा अर्चितः सेवित हुआ हूँ भद्रे हे बहुत सुंदर स्वभाव वाली इद्रिक भावेन इतने सुंदर भाव से भक्तितः भक्तिपूर्वक तत् इसलिए ते तुम्हारे संपादये पूरा करूंगा कामम मनोरथ को असतीनाम, जो स्त्रियां पति का भक्त नहीं है उन लोगों के लिए सुदुर्लभम, अत्यंत दुर्लभ मनोरथ। तो गंगा जी के तट पर महाराज परीक्षित की सभा में श्रील सुखदेव गोस्वामी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि मरुद गण आसुर भाव को छोड़कर देवता कैसे हो गए, क्या कारण था, उन्होंने कौन सा सुकृत किया, कौन सा पुण्य किया। इस प्रश्न का उत्तर सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं। मुख्य है यही कि इसके पीछे भगवत भजन कारण है। तो जैसा आप लोगों ने प्रसंग सुना था, दीति बहुत ही गर्हित, बहुत निंदनीय अभिप्राय से अपने पति की सेवा कर रही थी, सब प्रकार से सेवा कर रही थी। उसकी सेवा से कश्यप जी बहुत प्रसन्न हुए और उस प्रसन्नता में वे दीति से कहते हैं कि हे प्रिय, जिस स्त्री पर, पत्नी पर पति प्रसन्न हो जाता है तो उसकी सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। पति रेव ही नारीणाम दैवतम परमम स्मृतम, नारियों के लिए पति ही सबसे बड़ा दैव है, इष्ट देव है। और कहते हैं कि भगवान विष्णु जो सबके हृदय में रहते हैं, मन में रहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, तो वे प्रभु स्त्रियों के लिए पति के रूप में ही काम करते हैं, इतना तक कहते हैं। तो मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, सह अहम, वही मैं तुम्हारा पति, त्वया अर्चित, तुम्हारे द्वारा मैं अर्चित हुआ हूं, मेरी बहुत सेवा हुई है, सत्कार हुआ है, और वो अभी इद्रिक भावे ना, इतना सुंदर भाव से तुमने सेवा किया है, वाह रे कश्यप जी, कुछ नहीं समझ पा रहे थे। देखिए भाव की प्रशंसा कर रहे हैं, अरे सेवा की प्रशंसा कीजिए लेकिन भाव की क्या प्रशंसा कर रहे हैं। कश्यप जी के प्रति तो उसका भाव था, लेकिन कश्यप जी के एक बहुत गुणवान महान पुत्र की वो हत्या चाहती थी, इस दुर्भाव को भी नहीं समझ रहे थे। इसीलिए कश्यप जी संबोधन कर रहे हैं, भद्रे हे कल्याणी, भगवान ने बहुत कृपा करके तुमको मुझे पत्नी के रूप में दिया, ना सुंदर स्वभाव है तुम्हारा, बहुत अच्छी हो तुम, भद्रे का अर्थ ये है बहुत अच्छी हो। इद्रिक भावे न भक्ति, भक्ति से तुमने सेवा किया है, तुम्हारे हृदय में कोई दूसरा अभिप्राय नहीं, बस सेवा ही करती थी, सेवा के अतिरिक्त तुमने कभी कुछ चाहा नहीं, परंतु तुम्हारी सेवा का बहुत बड़ा ऋण मेरे सिर पर है, मेरा यह धर्म है, कर्तव्य है, जब सब कुछ छोड़ करके तुम मेरी सेवा में हो तो तुम्हारी यदि कोई इच्छा है तो उसे पूरा करना मेरा कर्तव्य है, मैं यह धर्म समझता हूं, कृपया मुझे चांस दो, अवसर दो, मैं तुम्हारे मनोरथ को पूरा कर सकूं। तत्ते संपादये कामम असतीनम सुदुर्लभम, तुम्हें मैं दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु दे सकता हूं, जो वस्तु, जो मनोरथ असती स्त्रियों के लिए अति दुर्लभ। यहां बहुत सीखने की बात है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके मन में मनोरथ होते हैं, हमें यह मिले, हमें वह मिले, हमें यह मिले, लेकिन वास्तव में वही नारी सुखनी रहती है और आगे भी सुखी रहती है जो पति से प्रेम करती है। पति से प्रेम नहीं करने वाले स्त्री का यह लोक और परलोक दोनों चौपट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, बहुत दुखनी होती है। कश्यप जी कहते हैं कि असती नाम सुदुर्लभम, अपतिव्रत पति से प्रेम नहीं करने वाली स्त्रियों को ये सब चीजें नहीं मिल सकती है जो मैं तुमको दे सकता हूँ। ये कोई भी पति प्रसन्न हो जाए तो भगवान उस स्त्री पर प्रसन्न हो जाते हैं और उसका मनोरथ पूरा करते हैं। तो मैं तुम्हारे काम तुम्हारी अभिलाषा को मैं पूरा करूंगा, तुम मांगो। तो पहले तो स्त्री स्वभाव होने से दीति ने बहुत नखरा किया, नहीं नहीं हम कोई इच्छा नहीं है, क्या इच्छा, आप मिले हैं मुझे सब कुछ मिला हुआ है, आपसे बढ़ करके क्या चीज। ये है स्त्री की भाषा, हमें और कुछ नहीं चाहिए। यदि शब्द जो लगाई है कि वरदो यदि में ब्राह्मण, यदि शब्द से ये सब वैकल्पिक विचार प्रस्तुत किए जाते हैं कि ये कहा होगा उसने, पहले यही कहा होगा कि नहीं हमें बाध्य मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, भगवान ने आपको दिया है, हमें अब इससे बढ़ करके धन क्या होगा, मैं आपको चाहती हूँ आपसे नहीं चाहती, मेरा धर्म है आपकी सेवा करना आपसे प्रेम करना, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कश्यप जी इंसिस्ट हुए, नहीं नहीं कुछ तो मांगो कुछ तो मांगो, कहते आप बिना मांगे ही देते हैं तो मैं क्या मांगू। मांगा तो उससे जाता है जो समझता नहीं है, मुझे मांगने की कभी इच्छा नहीं हुई, आपकी सेवा के अलावा मेरे मन में कोई संकल्प हुआ ही नहीं कभी, कृपया आप हमसे बाध्य मत कीजिए कि मांगो मांगो मांगो। कश्यप जी ने कहा नहीं मैं देना चाहता हूं, आखिर मेरे पास शक्ति है तो किसको मैं दूंगा, तुमको नहीं दूंगा तो किसको दूंगा। तो फिर कहते हैं अच्छा ठीक है तो मैं मांगूंगी तो आप देंगे, यदि शब्द से सब विचार उठ रहे हैं, तो मैं मांगूंगी तो आप देंगे, क्यों नहीं, मैं कह रहा हूं ना मांगने के लिए, बारंबार तुमसे आग्रह कर रहा हूं तुम मांगो मांगो और तुम कर देंगे। तो फिर कहो छोड़िए ऐसे ही मैं मजाक कर रही थी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इनको फ्रंट पर चढ़ा रही थी अपने पति को खूब, क्योंकि ऐसा वरदान मांगेगी कि इनका होश उड़ जाएगा, इसीलिए नकार रही है। स्त्रियों में सहज नखरा होता है, सहज भगवान ने दिया, नहीं छोड़िए वो ऐसे ही मैं मजाक कर रही थी, मुझे कुछ चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। नहीं नहीं कहो खुल करके कहो, संकोच मत करो, क्या चाहिए क्या चाहिए, आप देंगे क्या देंगे, क्यों नहीं दूंगा, 50 बार कह रहा हूं कि दूंगा 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 तो मांगो। फिर कहो मुझे कुछ संदेह है कि आप नहीं देंगे, मुझे संदेह हो रहा है, संदेह हो रहा है, क्या संदेह है, छोड़िए ऐसे ही मैं मजाक कर रही थी, आपसे क्या मांगना है, नहीं नहीं मांगो मांगो मांगो, तुम्हारी मांग पूरी करके ही मुझे सुख का अनुभव होगा, मैं अपने को धन्य समझूंगा, तो मांगो। सबसे पहले संबोधन करते हैं ब्राह्मण, हे वेद के अनुसार चलने वाले, मतलब आप झूठ तो बोल ही नहीं सकते। ब्रह्म से ब्राह्मण शब्द बना है, जो व्यक्ति वेद के अनुसार चलता है, वेद की बात बोलता है, सत्यपरायण होता है, उसको ब्राह्मण कहा गया है। सबसे पहले संबोधन की हे ब्राह्मण, हे वेद के अनुसार चलने वाले, मैं जानती हूं कि आप कभी न झूठ बोले हैं न बोल रहे हैं न बोलेंगे भविष्य में, आप सत्य की बिल्कुल मूर्ति। आपसे मैं अंत में फिर पूछ लेती हूं, वास्तव में आप देना चाहते हैं, यदि कश्यप जी ने कहा कि मैं क्या करूं, तुमको कैसे अपने कलेजा चीर करके बता दूं कि हाँ देना चाहता। अच्छा ठीक है हंस करके बोली, ठीक है ठीक है, वरदो यदि मैं ब्राह्मण, हे ब्राह्मण यदि आप सचमुच में वरद हैं, वरदान देने वाले हैं, आपको देने की अभिलाषा है, तो हाँ बोलो बोलो क्या चाहते हो, इस तरह से बोलते हैं। और वो तो इतना नाटक कर रही है, बस पुत्रम वृणे, मैं पुत्र चाहती हूं। इसके बाद बहुत घोर शब्द बोल, इंद्र हणम पुत्रम, मैं ऐसा पुत्र चाहती हूं जो इंद्र का वध कर दे। अब उसका मुख बिल्कुल बदल गया, रुख बदल गया, कश्यप जी को अब ज्ञान हुआ, करीब ज्ञान मान रहे हैं, तो कभी सोच भी नहीं सकते थे ड्रीम में भी कल्पना में भी कि दीति इतनी कठोर हृदय की हो सकती है, अपने ही पुत्र को मारने के लिए ये संकल्प करे। अरे इंद्र भी तो उसी के पुत्र थे, उसके बहन के पुत्र थे, तो उसके भी पुत्र हुए, मौसी हुई, और मौसी इतना कठोर हृदय की हो जाए। संस्कृत में मातृ स्वसा कहते हैं, स्वसा का अर्थ है बहन, माँ की बहन, तो उसी को आप भ्रंश में मौसी मौसी मासी मासी कहते हैं, तो मातृ स्वसा असली शब्द है माँ की बहन। तो थोड़ा गंभीर हुए कश्यप जी, चकित हो गए, ये क्या क्या मांग रही हो। फिर कहती है मैं ऐसा पुत्र चाहती हूं जिसकी मृत्यु न हो सके, अमृत्यु, किसी भी तरह से वो न मर सके, ऐसा मेरा बेटा होना चाहिए। जैसे पहले मार दिया गया, इंद्र ने मरवा दिया, ऐसा बेटा नहीं होना चाहिए कि फिर मारा जाए, अमृत्यु, मृत्यु शून्य। अच्छा मैं पुत्र चाहती हूं और मेरे पुत्र पहले मारे गए हैं, इसलिए दो विशेषण लगा रही, मैं चाहती हूं मृत पुत्रा, आपको पता है ना मेरे पुत्र मार दिए गए हैं, मेरे पुत्र मार दिए गए हैं, आपको पता है ना मैं पुत्रहीन हूं, इसलिए मैं पुत्र चाहती हूं, और चूंकि मेरे पुत्र मार दिए गए अतः मैं अब चाहती हूं कि मेरा ये जो नया पुत्र हो इसको किसी भी तरह से न मारा जा सके, मृत्यु शून्य। कश्यप जी की तो बोली बंद हो चुकी थी, लेकिन वो स्वयं ही कुछ प्रश्न करके और उत्तर दे रही है। मान लीजिए अगर कश्यप जी कहे ठीक है तुम्हारा पुत्र मृत्यु शून्य हो और तुम मृत पुत्रा हो, इसलिए पुत्र मांगना तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन इंद्र का वध करने वाला पुत्र क्यों चाहती हो। कश्यप जी बोल नहीं रहे थे, बोली तो उनकी समाप्त हो गई, अब वही स्वयं विकल्प वैकल्पिक प्रश्न खड़ा करके उत्तर दे रहे। कहते मान लीजिए अगर कश्यप जी पूछे कि क्यों इंद्र का वध चाहती हो, तो कहो जेन में घाती तो सुतर, इंद्र ने मेरे दो पुत्रों को मरवाया है भगवान विष्णु द्वारा, आपको पता नहीं है, इतना साधु बनते हैं बता पता ही नहीं है, मेरे पुत्र मारे गए हैं ना, और जिसने मारा है मैं उसको चाहती हूं को मारा जाए, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए। बस इतना कह करके चुप हो गए। वो तर्क दे रही है क्योंकि हमारे पुत्रों को मारा गया है, मृत पुत्र अहम, मेरे पुत्र मरे हैं और जिसने मारा है उसको मैं मारना चाहती हूं। यदि कश्यप जी कहें कि आखिर वो भी तो मेरा बेटा, वो आपका बेटा हो चाहे कुछ भी हो, हमारा तो नहीं है ना, हमको बेटा चाहिए, हमारा पुत्र जो हमारे कोख से जन्म ले और इंद्र का वध करे। इतना बड़ा कर्कश वरदान मांगना और अपने पति से और उन्हीं के पुत्र का वध करने के लिए नया पुत्र चाहना, यह बहुत बड़ा अविवेक है। एक पुत्र विश्व का राजा है, इंद्र पद पर है, इतना बड़ा बड़ी सफलता पाया हुआ बेटा और उसको मार दिया जाए, एक नए जन्मे हुए बेटा, बहुत ही गलत बात है वास्तव में। लेकिन क्या कोई करेगा, स्त्री के हृदय को कैसे बदला जा सकता है। एक कवि ने कहा है कि चत्वारह श्री जतः पूर्वम उपायास्तेन वेधसा, पंचम कोपि न सृष्ट जैन गृहियंते योषित। ब्रह्मा जी चार उपाय की सृष्टि कर रहे थे, दुनिया में व्यवहार चलाने के लिए, किसी को कंट्रोल करने के लिए चार उपाय बनाए, साम दाम दंड और साम दाम भेद और दंड, ये सामान्य नीति ब्रह्मा जी ने बनाया। यदि कोई व्यक्ति अपने वश में न हो, चाहे अपनी पत्नी हो या पुत्र हो या बाहरी समाज हो या शत्रु हो, तो सबसे पहले उसकी प्रशंसा की जाती है, उसे बड़ा कहा जाता है, जिसे प्रशंसा से वो बात मान लेता है। किसी विरोधी से कहिए कि कभी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि आप हमसे ऐसा करेंगे, मैं तो आपको बिल्कुल अच्छा समझता हूँ, साधु समझता हूँ, क्यों इतना विरोध कर रहे हो, आपके लिए शोभा नहीं देता है, आप तो महान व्यक्ति हैं, ये तो हो सकता है उसका चित बदल दे। इस पर भी अगर न माने कोई शत्रु या कोई अपना परिजन, तो उसको कुछ दाम दिया जाता है, कुछ पैसा दे दिया जाता है, कोई पद दे दिया जाता है, इसको दाम कहते हैं, तो उससे भी दब जाता है, अनुगामी होता है। और इससे भी काम नहीं चलता तब उसमें फूट डाला जाता है, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अंततः तीन उपायों से न माने तो दंड, शक्ति रहने पर। तो कभी कहता है कि ब्रह्मा जी चार उपाय की रचना कर रहे थे, लेकिन पांचवा वे उपाय रचना भूल गए, जिस उपाय से स्त्रियों को वश में किया जा सकता है, ऐसा उपाय वो रचे ही नहीं। जेन गृहयंते जोशी का ये भूल हो गई ब्रह्मा से, भूल क्या हो गए, उनके पास ऐसी बुद्धि ही नहीं है कि वो स्त्रियों को वश में करने वाला कोई उपाय रच दे। और जो लोग समझते हैं कि यह स्त्री हमारे वश में है, वो वास्तव में अज्ञ व्यक्ति, वो वश में है ये समझना चाहिए। ये सत्य यही है, और ये समझे कि नहीं, यह स्त्री पूर्ण मेरी अनुगामिनी है, पूर्ण मेरे वश में है, यह भ्रम है। मैं 100% के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जनरल बात यह है, नारी विवश नर सकल गोसाई नाचहिं नट मर कटकी नाई। कलयुग में तो पुरुष लोग वैसे स्त्रियों के वश में रहते हैं जैसे मदारी के अधीन बानर रहते हैं, तो जैसे नचाता है, जैसे गवाता है, जैसे गाते हैं नाचते हैं, मालिक को रिझाते हैं, कमाते हैं पैसा, वो सब मदारी ले लेता है, बानर वाला ले लेता है देखा गया है, चाहे लाख है नाचिए गाइए या घूमिए काम धंधा कीजिए, लेकिन सारा पैसा आ जाता है कहीं और, जो मालिक होता है उसके पास आता है। मनुष्य दो ही आराधना कर सकता है, या तो भगवान की करे या स्त्री की करे, उसको प्रसन्न करने के फेर में रहे चाहे भगवान को, दोनों जस्ट विपरीत बात है। तो अधिकांश मनुष्यों का जीवन जा रहा है अपने पत्नी की आराधना में, यह खुश रहेगी तो बहुत बड़ा लाभ है, यही व्यक्ति सोच। कश्यप जी यही कह रहे थे ना, पहले अपनी पत्नी को इतना अच्छा कह रहे थे, भद्रे सुमध्य में बामोरु, कितना कितना सुंदर संबोधन कर रहे हैं, तो बाहरी जो संबोधन कर रहे थे, बाहर के शरीर का वर्णन करने के लिए, वो तो बिल्कुल बिफिटिंग था, ठीक था, वास्तव में दीति परम सुंदरी है, बहुत सुंदर, लेकिन उसके भाव का भी इन्होंने वर्णन किया, भद्रे तुम बहुत अच्छी हो, ये हो वो हो, और इद्रिक भाव है ना, ऐसे भाव से सेवा किया, तो उसके भाव को पहचान नहीं रहे थे। तो वास्तव में ब्रह्मा जी ने वो उपाय नहीं रचा आज तक जिससे स्त्रियां वश में की जा सके। वो कहा गया है कि स्त्री को आप काट काट करके खंडित कर दीजिए, या बहुत बड़ा दान दीजिए, बहुत पैसा दीजिए, बहुत बड़ा सम्मान दीजिए, रोज चरण में प्रणाम कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, वो वश में नहीं होगी ऐसा कहा गया। यहां जो प्रसंग आ गया है इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारा कोई व्यक्तिगत ऐसा नहीं है चिड़े किसी से कि। तो इन्होंने कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वर मांगा, तो उसने ये वर मांगा, और अपने वर के यथात्म्य को, यथार्थता को, औचित्य को सिद्ध कर रही है, क्योंकि मृत पुत्र अहम, मैं मृत पुत्र हूं, मेरे पुत्र मर गए हैं, मारे गए हैं, और इंद्र को मैं इसलिए मारना चाहती हूं, मरवाना चाहती हूं, क्योंकि जेना में घाती तो सुतो, मेरे दोनों पुत्र मारे गए, अगर दुष्ट एक को भी छोड़ दिया होता तो मेरे मन में ऐसा विचार नहीं आया, लेकिन विश्व विख्यात मेरे दोनों पुत्र मारे गए, इसका मुझे बहुत दुख है, और आप नहीं समझ रहे थे, मैं आपकी सेवा कर रही थी, कुछ कर रही थी, बहुत काल से मेरे मन में ये सुन चुभ रहा है, मुझे दुख है, मैं दुख में बर मांग रही हूं, आपको देना ही पड़ेगा। तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, निसम्य तद बचो विप्रो विमनः पर्यतप्यता। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वो बेचारा वो ब्राह्मण ये बात सुन करके, अब यहां केवल विप्र कह रहे हैं, दुर्दशा देख करके कश्यप जी की, अपने पत्नी की यह बात सुनकर ब्राह्मण कश्यप जी विमना बहुत खिन्न हो गए। जो पहले हंस हंस कर बात करते थे, मन में बहुत बड़ा उत्साह था कि पत्नी के लिए ये करूंगा ये करूंगा, अब एकदम मन विषाद में डूब गया, खिन्न हो गए, प्रसन्नता सारी चली गई, पर ये तप्यता जलने लगे मन में, परिताप करने लगे, परिताप का अर्थ जो चारों ओर से जलन होने लगे, मन में भी शरीर में भी, जैसे अर्जुन में हो रहा था। अर्जुन रथ पर खड़े नहीं रह सके स्वजनों को देख करके, वो कहते हैं तो चैव परिदह्यते, मेरे चमड़े में आग सी लग रही है, मेरी जलन हो रही है, मेरा दिमाग घूम रहा है, मैं इस रथ पर खड़ा तक नहीं रह सकता हूं, फिर युद्ध करना तो बहुत दूर की बात, जो खड़ा ही नहीं रहेगा वो युद्ध क्या करेगा, नच सपनों में अवस्था थी, मैं यहां पर खड़ा नहीं रह सकता हूं कृष्ण, हम लोग बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं। तो ये दशा अर्जुन की हुई, क्षण भर में कश्यप जी की यही दशा तुरंत हो गई, इतना प्रसन्न व्यक्ति हंस हंस करके आनंद में अपनी पत्नी से बात कर रहा था, लेकिन पत्नी ने ऐसी बात कहा, ऐसा मान रखा कि सारा आनंद चला गया और बिल्कुल जलने लगे, मन में बहुत बड़ा शोक हो गया, इंद्र जैसे पुत्र को मरवाने के लिए मैं दूसरा पुत्र दूं, और इधर ना भी नहीं कर सकते थे, वचन को पूरा न करना यह भी उनके लिए असंभव बात, और अपने पुत्र इंद्र का वध कराना यह भी नहीं हो सकता, पर यतप्यता परिताप करने लगे, बहुत शोक में हो गए, और कहते हैं मन ही मन, अहो अधर्म सुमहान अद्य में समुपस्थित, अहो आज मेरे जीवन में बहुत बड़ा अधर्म आ गया, दोनों तरह से, यदि मैं वचन पूरा नहीं करता हूं तो यह बहुत बड़ा अधर्म हो गया, और वह भी अपनी पत्नी को वचन दे करके पूरा नहीं करूंगा, और पूरा करता हूं तो इंद्र का वध कराना पड़ेगा, यह भी बहुत बड़ा पाप, मेरे जीवन में बहुत बड़ा कुकर्म, बहुत बड़ा अधर्म आ गया सामने, आज सामने समुपस्थित, समुपस्थित, या नहीं कि बाद में चलो देखेंगे, ऐसा समय आएगा तो परिस्थिति बदल सकती है, अभी ये मांग रही है और नहीं पूरा करने पर पता नहीं ये क्या करेगी, वही कई कई जैसा बोल रही होगी कि पूरा करोगे कि नहीं करोगे ये पहले बताओ, बहुत दानी बन रहे थे, तो कश्यप जी इस तरह से पड़े फेर रोने लगे, पहले तो कह रहे थे कि स्त्री के लिए पति ही भगवान है, और अब भगवान रोना चालू किया, ये दशा हो, इतना प्रचंड होती है पत्नी स्त्री की, उसके आगे पुरुष कुछ कर ही नहीं सकता, चलो बोलो देते हो कि नहीं देते हो। तो ब्राह्मण बेचारे रोने लगे, परिताप करने लगे, फिर कहते हैं अहो अद्येन्द्रिया रामो जोशिन मये हमाया गृहित चेता कृपण पतिस्य नरके ध्रुवम। हाय हाय, भगवान की माया ने स्त्री का रूप धारण करके मुझे मोह लिया, मेरे चित्त को ग्रस्त कर लिया, गृहित चेतन, और आज इस विश्व में मेरे जैसा लाचार व्यक्ति कोई नहीं है। कृपण, कृपण का अर्थ होता है जो बेचारा, हिंदी में वही शब्द अनुवाद करेंगे, बेचारा, जिसको कोई कुछ भी करने की शक्ति ना है, एकदम लाचार बेचारा, दीन। आज मैं दीन हूं, क्यों दीन हूं, क्योंकि स्त्री ने मेरे चित्त को पकड़ लिया, मेरे मन को पकड़ लिया, मेरा मन स्त्री के वश में हो गया, इसलिए मैं दीन हूं। तो अब क्या होगा, अब होगा क्या, पति से नरके ध्रुवम, अब मैं शीघ्र ही नरक में गिरूंगा। झूठ बोलूंगा, वचन पूरा नहीं करूंगा, तब भी नरक निश्चित है, और इंद्र का वध कराऊंगा तब भी नरक निश्चित है। तो पति से नरके ध्रुवम, मैं नरक में निश्चित गिरूंगा। कश्यप जी कह रहे कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि किसी उपाय से मैं नरक गिरने से बच जाऊं, इसलिए ध्रुवम शब्द लगा रहे हैं, मैं निश्चित नरक में गिरूंगा। इतना हाई पद पर, देवता के पद पर हैं, कह रहे हैं कि अब तो मुझे नरक में गिरना है, कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। देखिए इस तरह से झूठ बोलने का आदि अवसर आ रहा है। इंद्र का वध नहीं कराना चाहते तो कह देते नहीं दूंगा, मुझे क्या पता था कि तुम ऐसा वर मांगोगी। आजकल का आदमी तो तुरंत अपनी पत्नी को ऐसे कह देगा, हमको क्या पता था कि तुम ये मांगोगी, हम ये नहीं देंगे, बस हो गया। और समाज में बोलना होगा तो राजा हरिश्चंद्र बन जाएंगे, हम तो पक्की जबान कहेंगे, पक्की जबान। झूठ बोलने की रोज रोज आदत ही है, हैबिट है, और फिर भी राजा हरिश्चंद्र बनते। कश्यप जी जैसे महान पुरुष के लिए यह बहुत बड़े अधर्म का समय आ गया, अपने वचन को तोड़ना या पूरा करना, दोनों। वचन पूरा करते हैं तब भी बहुत बड़ा अधर्म नरक में जाने का कारण होगा, और वचन पूरा नहीं करते हैं तो अपजस भी और नरक भी, दोनों होने वाला। कोई महान व्यक्ति अपने विषय में इस तरह से सोचता है? आजकल के अज्ञ लोग अपने विषय में सोचते ही नहीं है कि हमारे आगे क्या गति होगी, कहां जाऊंगा। एक बार मैं एक व्यक्ति से पूछा कि आप ये शरीर छोड़ने के बाद कहां जाना चाहते हैं, क्या वो तो फिर प्रश्न समझा नहीं, पूछा क्या कहते हैं, मतलब शरीर छोड़ने के बाद, मरने के बाद आप कहां जाना चाहते हैं। वो कहता है मैं जो चाहूंगा उसके अनुसार किया जाएगा। मैं किया जाए या न किया जाए, आपकी क्या इच्छा है, आप कहां जाना चाहते हैं। तो फिर कहता है वो जहां भेज देगा वहां जाएंगे। ये ऐसा तो दिमाग है, अभी हम लोग यहां बैठे हैं, किसी को उठाकर पुलिस ले जाए जेल तो जाएगा, कहेगा मैंने क्या गलती किया, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन ये लोग कहते हैं जहां भेज देंगे वहां जाएंगे, जहां भेज देगा वहां जाएंगे। मैं कहा कि आखिर आपकी इच्छा क्या है, तो बार बार कह रहा था हमारी इच्छा के अनुसार होगा ही नहीं तो क्या इच्छा करूं। अरे इच्छा तो करना जीव का स्वाभाविक अधिकार है, स्वरूप है, इच्छा तो करना चाहिए, चाहे गलत इच्छा करे चाहे सही करे। तो इतना जीवन में अज्ञान है कि व्यक्ति को कोई इसकी परवाह नहीं है कि इस शरीर के बाद मैं कहां जाऊंगा, कोई चिंता नहीं है। आज के बाद क्या खाऊंगा इसकी चिंता है, इस साल के बाद अगले साल के लिए चिंता है, बैंक में रुपया जमा करके आदमी उसको बढ़ा करके लेना चाहता है, भविष्य की चिंता है, लेकिन केवल इसी जीवन के अंदर, और इस जीवन के बाद की कोई चिंता नहीं। यह बहुत बड़ा अज्ञान। कश्यप जी ये सोच रहे कि इतने बड़े अधर्म करने के बाद मेरी अधोगति निश्चित, पति से नरके ध्रुव, मैं निश्चित नरक में गिरूंगा, क्योंकि मैं इंद्रियाराम हूं, इंद्रियेषु आरमते इति इंद्रियाराम, जो इंद्रियों में ही रमे सुख माने उसको इंद्रियाराम कहते, जो आत्मा में रमता है उसको आत्माराम कहते, भगवान में रमता है उसको आत्माराम कहते। लेकिन जो इंद्रियों में रमता है उसको इंद्रियाराम कहते हैं। मनुष्य को भगवान ने बहुत सी इंद्रियां दिया है, ज्ञान इंद्रिया खास करके आंख, कान, त्वक, जिह्वा, नासिका। तो यदि कोई केवल कुछ मधुर शब्द सुनना चाहता है, भोगना चाहता है, कुछ कोमल स्पर्श चाहता है, या खाना चाहता है, सूंघना चाहता है, सुनना चाहता है, इन्हीं सब विषयों में जो सुख मान रहा है, किसी को छू करके, किसी को देख करके, किसी की बात सुनकर, जैसे तैसे, वो इंद्रियाराम है। इंद्रियाराम निश्चित नरक में गिरता है। जो व्यक्ति केवल अपने इंद्रियों को तृप्त कर रहा है इस संसार में, उसका डेस्टिनेशन बहुत खराब है, बहुत खराब है। इस जीवन में मनुष्य को चाहिए को इंद्रियों को भोगों से रोक करके तप करे। तप करने के लिए मनुष्य शरीर है। कुत्ते बिल्ली जैसा इंद्रियों को तृप्त करने के लिए शरीर नहीं। भगवान ऋषभ देव ने कहा, तपो दिव्यम पुत्र का जन सत्व शुद्ध जस्मात ब्रह्म सौख्यम तनंतम। ब्रह्म सुख है या दिव्य सुख है, इंद्रियों को कंट्रोल करने से मिलता है। इंद्रियों के भोगों में उच्छृंखल लगे रहने से आगे बहुत दुर्गति होती है। कश्यप जी कहते हैं, अहो अद इंद्रिया रामो, मैं इंद्रियों के विषय में सुख मान रहा हूं, रम रहा हूं। वो तो अपनी स्थिति को समझ रहे हैं कि वास्तव में उनका चित्त कितना लगा हुआ था दीति में, और किस तरह से उसको छूना चाहते थे, उसकी बातें सुनना चाहते थे, देखना चाहते थे। ये इंद्रियाराम का लक्षण है। जो बात बोल भी रहे थे उससे भी पता चल रहा था कि वे कामुकता से ग्रस्त हैं। संबोधन में सुमध्य में, सुमध्य में जिसका मध्य भाग कटी अच्छा हो, छीण हो, उसको सुमध्यमा कहते हैं। और बरोरु ये सब कामुक संबोधन कर रहे थे। वो अनुभव कर रहे हैं कि मैं तो पूरी तरह से भगवान की माया से पकड़ लिया गया। माया किस रूप में पकड़ी है? जोशिन मैया, स्त्री के रूप में। और वास्तव में स्त्रियां ही माया की प्रतिनिधि हैं। माया किसी को पकड़ती है तो स्त्री के रूप में पकड़ती है। ये उसकी पकड़ इस तरह से होती है। तो मैं निश्चित नरक में गिरूंगा। यह प्रश्न उनके मन में आया कि आखिर इसकी भी गलती है ना, आप केवल अपनी गलती क्यों कह रहे हैं? दीति की गलती है कि नहीं, अपराध है कि नहीं? कश्यप जी कहते नहीं, नहीं, इसका कोई अपराध नहीं, इसका कोई अपराध नहीं है, इसका कोई दोष नहीं है। दोष सब मुझ गधे का है, मैं ऐसा पागल व्यक्ति हूं, इसका कोई अपराध नहीं है। कोटि क्रमोन वर्तन्ते स्वभावम यह जोशित। ये जो दीति ने किया और जो मांगा, जो कपट किया मेरे साथ, ये तो अपने स्वभाव का अनुवर्तन की है। यही स्वभाव है स्त्री का, तो ये तो बिल्कुल स्वभाव के अनुसार काम की है। गलत कौन किया है? मैं गलत किया। धिंग माम बता बुधम स्वार्थे जदहम त्व जितेंद्रिय। धिकार तो मुझको है। इस स्त्री ने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी किया है, अपने स्वभाव के अनुसार किया है। यही स्वभाव ही है। तो जो कोई अपने स्वभाव के अनुसार चले तो उसको गलत नहीं कहा जाता। स्वभाव का त्याग करके चले तो कहा जाएगा कि यह उत्पटांग चल रहा है। अगर स्त्री कपट करना छोड़ दे तो इसका मतलब है कि अपने स्वभाव को छोड़ रही है, तो ये गलत है। उनके कहने का सही है, इसने जो कुछ किया सही किया। जैसे मान लीजिए आप अगर एक मिर्च खा रहे हैं, मिर्चा खा रहे हैं, और मिर्चा यदि तिक्त न लगे तो आप उस पर खुश नहीं होंगे, कहेंगे कि मिर्च अपने स्वभाव में नहीं है, कौन दे दिया, दूसरा मिर्च दो। और मान लीजिए मिर्च कोई खाया और बहुत जबरदस्त तीता लग गया और उसके मुख से लार गिरने लगा, आंखों में पानी आवे, तो उसमें मिर्च का क्या दोष है? वो तो स्वभाव है ना, खाने वाले का दोष था ना, उसको थोड़ा खाना चाहिए था, है ना। एक बार हमने देखा, हम लोग त्रिची में गए थे, तो एक जया नाम की मिर्च होती है पहाड़ में, छोटी, इतनी छोटी, तो लोग दिए थे पहाड़ के लोग, वो लोग कह दिए कि बहुत तेज तेज है मिर्च, तो हमने तो लिया, मैं चखा भी नहीं, और कई लोग ले लिए। एक लड़का था वो पूरा खा गया, पूरा खा गया तो भोजन से उठ करके अब वो पानी पी रहा था, आंखों में आंसू आ रहा था, सी 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 सी, सी। बहुत बहुत उस व्यक्ति का मिर्च ने क्या बिगाड़ा, और मिर्च ने कोई गलत किया क्या? मिर्च का जो स्वभाव है वही तो प्रस्तुत किया ना। इस दीति ने क्या गलती किया है, जब भगवान ने कपटी स्वभाव ही बनाया है, हृदय में यही भरा है ठूस ठूस करके, तो ये जो की वो अच्छा की है। मैं गधा हूं, मैं बेवकूफ हूं, मैं अपने इंद्रिय पर कंट्रोल नहीं कर सका, और मैं अपने स्वार्थ के विषय में अबुद्ध हूं। अबुद्ध का अर्थ है अज्ञ। मैं नहीं समझ पाया कि हमारे जीवन का वास्तविक स्वार्थ क्या है। मैं ये समझा कि इस स्त्री को प्रसन्न करना ही मेरा स्वार्थ है, परमार्थ सब कुछ। ये मेरी गलती, धिक्कार है मुझको कि मैं इसके स्वभाव को नहीं समझ पाया। पर इसने जो कुछ भी किया है सही किया है, इसने इसका दोष नहीं है। ये अपने मार्ग का त्याग नहीं किया है, हमने अपने मार्ग का त्याग किया। तो ये है स्वभाव स्त्रियों का। कौन बोल रहा है, ध्यान रखिए, कोई साधु कोई विरक्त नहीं बोल रहा है, खास पति बोल रहा है। और तत्काल ऐसा कांड हो गया है कि वो बोल रहा है। इसलिए बहुत गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए। क्या बात है कि कश्यप जी जैसा व्यक्ति और अपने पत्नी के स्वभाव या स्त्री मात्र के स्वभाव को इस तरह बोलने लगा, उसके बेचारे के जीवन में ऐसी घटना घटी। उसी से मांगा जाए कि तुम्हारा बेटा मर जाए इंद्र, मुझे पुत्र दो, इंद्र को मारने वाला पुत्र, मुझे ये चाहिए। इस मांग पर कश्यप जी के हृदय में क्या बीत रही होगी, कोई भी व्यक्ति कुछ कल्पना कर सकता है। और उस समय अपनी पत्नी के प्रति उसका क्या भाव हो रहा होगा, वो तो मिला करके देख ले। नहीं नहीं, इसका व्यक्तिगत दोष नहीं है, यही स्वभाव है। कितना छिपा रही थी, हमेशा हंस करके बोलती थी कश्यप जी से, मंद मुस्कान के साथ तिरछी चितवन से देखती थी, और बोली बहुत मधुर बोलती थी, और अपने कठोर भाव को अपने फेस पर कभी आने ही नहीं दिया, कभी नहीं आने दिया। इस विषय में स्त्रियां बहुत दक्ष होती हैं, उनके हृदय में कुछ और रहता है, बाहर कुछ और रहता है, भीतर के भाव को दबा लेती है पूरा, ये इस पर उनका कंट्रोल है, बहुत अच्छी तरह से ब्रेक लगा सकती है इस भाव पर। लेकिन पुरुष तो जो बाहर भीतर वो खुल जाता है, वो छिपाने में समर्थ नहीं होता। एक श्लोक में कहा गया है, जदंत तन्न जिह्वायाम, जद जिह्वायाम न तद बही, जद बही न चकुर बनती, विचित्र चरिता स्त्रिया। स्त्रियों के अंत, जद अंत जो भीतर रहता है वो बाहर जीह पर नहीं आता। जदंत तन्न जिह्वायाम, जो भीतर से वो चिंतन करती हैं उसको जीभ पर नहीं लाती हैं, और जीभ पर जो बात लाती हैं उसको बाहर नहीं प्रकाशित करती हैं, केवल थोड़ा सा उपांशु उच्चारण करती हैं। और जो जीभ बाहर बात करती हैं कहती हैं वो करती नहीं। विचित्र चरित्र स्त्रियां, अद्भुत चरित्र की स्त्रियां होती हैं। भीतर कुछ और सोच रही है, बोल कुछ और रही है, कर कुछ और रही है। मल्टी पर्पस वाला उनका ये शरीर है, वो कुछ भी विपरीत सोच सकती है। कश्यप जी यही कह रहे, कोतिक्रमो कह अतिक्रम, इस दीति ने क्या अतिक्रम किया है। अतिक्रम का अर्थ है कि अपने लिख को, अपने मर्यादा को छोड़कर इसने क्या किया है, कुछ नहीं किया है, जो स्वभाव है उसी के अनुसार किया है। स्वभावम यह जोशित धिंग माम, मुझे धिक्कार है जो मैं अपने स्वार्थ को नहीं समझ सका, भगवान के भक्ति को नहीं समझ सका, और इस स्त्री में उलझ गया। इसको प्रसन्न करने के लिए ऐसे लंबा लंबा भाषण कर रहे थे कि पति ही स्त्री के लिए भगवान है, ये है वो है, ये है वो, इस तरह से बोल रहे। अब भगवत्ता कहाँ गई, अब कश्यप जी की भगवत्ता सब कहाँ गई बताइए। एक स्त्री ने इस तरह रुला दिया उनको। मैं अजितेंद्रिय हूं, मैं इंद्रियों का गुलाम हूं, दास हूं, मेरी गलती है। क्या स्वभाव है स्त्रियों का? श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं स्वभाव माह, स्वभाव बता रहे हैं। शरद पद्मो सवन वक्त्रं वचश्च श्रवणामृतं हृदयं क्षुरधाराभं स्त्रीणां को वेद चेष्टितं। स्त्रियों का स्वभाव बता रहे कश्यप जी, उनका जो मुख होता है वो कमल जैसा सुंदर होता है और शरद कालीन कमल जैसा सुंदर। कमल तो ऐसे सुंदर होता ही है, लेकिन शरद काल में जो कमल खिलता है उसमें और अधिक सुंदरता होती है। शरद पद्म समम वक्त्रम, स्त्रियों के मुख पर शरद कालीन कमल का विकास होता है, उत्सव होता है, अर्थात कमल जैसा सुंदर होता है मुंह, तो इतना सुंदर होता है। और वचश्च श्रवणामृतम, और उनकी जो वाणी होती है जो पुरुषों से बोलती हैं, तो दोनों कानों के लिए वो अमृतम, अमृत जैसा मधुर लगता है। वचन कानों के लिए अमृत श्रवणामृतम, और उनका मुख है आंखों के लिए अमृत कमल जैसा परम सुंदर, परंतु हृदयम छुर धारा भर, उनका जो हृदय ब्रह्मा जी ने फिट किया है वो छुरे की धार जैसा पर विघात में अति तीक्ष्ण, अति तीक्ष्ण। अब बताए चेहरा इतना अच्छा बनाए, वाणी कोयल जैसी बनाए, लेकिन ब्रह्मा जी हृदय में छुरा ही रख दिए, और वो भी तीक्ष्ण करके शान धरा करके रखे, पर विघाते अति तीक्ष्ण। ये कश्यप जी बोल रहे हैं। स्त्रीणाम को वेद चेष्टितम, कौन है इस दुनिया में जो किसी स्त्री के अभिप्राय को समझ जाए कि ये क्या सोच रही है, क्या करना चाहती, कौन है जान पाएगा? न कोपी। इसका उत्तर दिया न कह अपि, कोई भी नहीं। अथवा एक अर्थ है कि को वेद, कह का अर्थ है ब्रह्मा जी, केवल ब्रह्मा जी जान सकते हैं, बाकी कोई नहीं जान सकता। इसका एक अर्थ यह भी है ब्रह्मा जी चूंकि स्त्री का हृदय बनाए हैं तो उसमें क्या क्या भरे हैं, क्या क्या छुरा गड़ा सा जो भी भरे हैं, वही जानते हैं कि इसमें क्या क्या है और कैसे वो काटेगी किसी को, कितना छल करके धूर्तता करके, वो ब्रह्मा जी जानते हैं। अथवा न कोपी, ब्रह्मा तक नहीं जानते और दूसरा क्या जानेगा। विधिहु नन्नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अभय अवगुण खान। रामायण में भरत जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी जो स्त्री का हृदय बनाए हैं उनको भी पता नहीं है कि उसके हृदय में क्या क्या है, जो बनाए हैं हृदय और उसे स्टोर में माल रखे हैं, ब्रह्मा जी को भी पता नहीं कि क्या क्या है, वो भी नहीं जान सकते। स्त्रिय चरित्र पुरुषस्य भाग्यम, देवा न जानन्ति कुतो मनुष्य। स्त्री के चरित्र को और पुरुष के भाग्य को कि कब उसके जीवन में क्या होगा, इसको देवता लोग भी नहीं जानते हैं, मनुष्य क्या समझेंगे, मनुष्य क्या स्त्री की चाल को समझेंगे। ये तो देवता है ना कश्यप जी, रात दिन साथ में रहने वाले अपने पत्नी के इस कर्कश कठोर अभिप्राय को नहीं जान पाए, कौन जानेगा कब क्या करना चाहती हैं, क्या प्लान करना चाहती हैं। जलपंति सार्ध मन लेना, ये बात करती हैं किसी और से, देखती हैं किसी और के तरफ और हृदय में चिंतन किसी और का करती है। ये बिल्कुल फैक्ट बात है वास्तव में। इस शास्त्र कहता है नयन विकार ही अन्यम वचनय रन्यम बेचेष्टित रन्यम रमयति श्रुते नान्यम स्त्री बहुरूपा निजा कस्य। शास्त्र कहता है कि स्त्री नयन से किसी और को देखती है, वचन से किसी और से बात करती है, शारीरिक चेष्टा से किसी और के साथ दिखाती है भाव भंगी और रमण करती है किसी और के साथ। ऐसी स्त्री किसकी है? मूर्ख व्यक्ति मान लेते हैं कि यह मेरी है, मुझसे प्रेम करती है, ये सब धोखा है। इस शास्त्र को हटा, इसी पर कश्यप जी कह रहे हैं देखो भगवान ने इतना सुंदर मुख बनाया है और वचन इतना सुंदर अमृत, दोनों कानों के लिए अमृत। श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी अर्थ लिखते हैं श्रवण है, श्रुति तयोह अमृतम। श्रवण का अर्थ करते हैं दोनों कान। इसका अर्थ है कि पुरुष जब स्त्री की बात सुनता है तो वो यही कामना करता है कि हमें पृथु महाराज जैसा 10,000 कान हो जाए कि इसकी और बात सुने, आनंद से सुने। तो दोनों कानों से सुनता है, इसका मतलब यह है कि सावधानी से सुनता है, एक शब्द भी गिरने नहीं देता है और उसी को याद रखता है हमेशा। तो उसकी बात सुनने में बहुत सुंदर लगती है, अमृत जैसी, और देखने में तो नयन तृप्त हो जाते हैं उसके मुख को देखने में, पर उसका हृदय अद्भुत कर्कश बना दिए ब्रह्मा। यही स्वभाव है स्त्री का, उसके हृदय पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। आप सभी सोचेंगे कि तो बहुत कड़ा प्रवचन है, लेकिन वास्तव में भागवत का श्लोक है और प्रसंग में आ रहा है, कोई मैं नया एकाएक लेकर के नहीं कह रहा। कश्यप जी का हृदय बहुत दुखी है, यह बात जरूर है कि दुखी हृदय से वे बात को व्यक्त कर रहे हैं, तो उस समय आदमी कुछ अतिशयोक्ति करता ही है ना। लेकिन जो भी वे कर रहे हैं, परंतु उसमें सत्यता भी काफी अंश में है। स्त्री का निर्माण भगवान ने कपट करने के लिए ही किया है, यह अर्थ है, और पुरुषों की मति को मोहित करके उनसे काम धंधा कराना, घर गृहस्थी बसाना, दुनिया का काम कराने के लिए किया गया। ये तो अगर स्त्री के अधीन न हो पुरुष तो कुछ नहीं करेंगे। ऐसा देखा जाता है कि अगर किसी से पूछिए कि तुम विवाह करोगे तो सोचता है पहले कुछ कमाए, कुछ काम धंधा करें, घर द्वार बना लें, तब न विवाह करेंगे। और विवाह नहीं करना है तो उसको बहुत चिंता नहीं होती, कोई बात नहीं। आजकल के पुरुष लोग तो ये सोचते हैं कि हमको पत्नी ही कमाने वाली मिले, और ये क्या करेंगे, बैठ कर खाएंगे। इस तरह का विचार जो है वैदिक विचार नहीं है, ये सब पाश्चात्य विचार आ रहा, उधर का विचार आ रहा, और इसमें बहुत भारी खतरा है समाज को। अगर पत्नी कमाएगी तब वही पति बनी रहेगी, कंट्रोल नहीं कर सकते आप, है ना। जो पैसा कमाएगा, पालेगा, पोसेगा, वही तो मालिक है ना। तो ऐसे ही कंट्रोल करना कठिन है, और कमाने लगे तब तो उसको क्या कंट्रोल करना। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो बेचारा लाचार रहेगा। वैदिक प्रथा यह है कि स्त्री घर में काम करे और सब घर बुहारे, लिपे पोते, भगवान की पूजा करे, भोजन बनाए, बच्चों की देखरेख करे, अतिथियों का स्वागत करे, ये बहुत बड़ा काम है। और वो अभी काम करने जाए, तुम भी जाओ, घर इसी तरह भूत के डेरा जैसा दिन भर रहे, कैसा घर है, ये अच्छा नहीं है। भले आदमी कुछ अभाव में, गरीबी में काम चलावे, लेकिन स्त्री को बाध्य नहीं करना चाहिए कि वो जा करके काम करे। हम लोग देखते हैं गांव में हल चलता है तो बैल कमजोर भी होता है तो बैल को ही हल में जोता जाता है, गाय कभी नहीं जोती गई। मैंने कभी नहीं देखा है। वो दूध देती है, दूध देती है, उसका उसके दूध से पोषण होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको हॉल में चलाओ, गाड़ी में जोतो, ऐसा नहीं, बिल्कुल गलत बात। और काम करने में उसे बहुत से दूषित पुरुष मिलते हैं जो उसके सील की, सदाचार की रक्षा नहीं कर पाते हैं। कई कारण हैं, वैदिक संस्कृति में बात कही जाती है पुरुष को ही काम करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। तो जो भी हो, इस तरह से मैं ये कह रहा था भागवत के अनुसार कि भगवान ने स्त्रियों का निर्माण पुरुषों को कंट्रोल करने के लिए किया, कंट्रोल में रह करके कुछ काम करे, दुनिया में भजन करे और काम धंधा करे, इसके लिए जरूरी था। फिर कश्यप जी कहते हैं, नहीं कश्चित प्रिय स्त्री नाम अंजसा स्वास्यात्मना पतिम पुत्रम भ्रातरमा घनंत्यर्थे घाते अंतिके। स्त्रियों को कोई भी अंजसा प्रिय नहीं होता है, डायरेक्ट प्रिय नहीं होता है। अगर स्त्रियों का कुछ स्वार्थ पूरा होता है किसी के द्वारा तो उससे भी प्रेम करती है, लेकिन पूरा पूरा शुद्ध प्रेम नहीं करती है। पति आदि से भी अगर पति उनके लिए कुछ करता है तब प्रेम करती है, और कुछ न करे तो उससे भी प्रेम नहीं करेगी। क्यों? स्वासी साथ मना। स्त्रियों का चित्त हमेशा उनके प्रिय वस्तु में लगा रहता है, वो पति से भी अपेक्षा करती है ये लाइए। उनको अपना जो प्रिय वस्तु है, चाहे तुच्छ इंद्रिय का भोग हो चाहे अन्य वस्तु हो, उसी के लिए प्रयास करती है। आत्मा का जत्न भी होता है, अपने स्वार्थ को पूरा करने में ही उनका जत्न रहता है, उसी में चित्त लगा रहता है। और यदि उनके स्वार्थ में कोई बाधक बना तो चाहे पति हो चाहे पुत्र हो चाहे भाई हो, यदि समय मिले तो स्वयं मार देते हैं, नहीं तो घाते अंति च मरवा देती है। ये कश्यप जी कह रहे हैं, इतना स्वार्थ में उनका चित्त जमा रहता है कि थोड़ा भी बाधा दिया जाए और तुच्छ स्वार्थ के लिए, अगर किसी पुरुष से उसका संपर्क हो गया है तो थोड़े से सुख के लिए वो पति का वध करा सकती है। ये इतिहास में देखा गया। श्रील प्रभुपाद जी प्रपोर्ट में कहते हैं कि कई जगह सुना गया है कि लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने अपने पतियों का वध करा दिया, ये मरेगा तभी पैसा मिलेगा इसलिए मार। ऐसा नहीं कि पुरुष लोग ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन ज्यादा स्त्रियां करती। पतिं पुत्रं भ्रातरं वा अपि, वा का अर्थ है अपि भी, दूसरे का वध करा देते कौन बड़ा आश्चर्य की बात है, अपने पति का पुत्र का भाई का भी वध करा देती। घ्नन्ति, अपने अर्थ के लिए अपने निमित्त को अपने प्रयोजन को पूरा करने के लिए वो मरवा देती, मार देती है। पहले तो ये कहते घ्नन्ति, और यदि स्वयं मारने की सुविधा नहीं होती तो घाते अंति मरवा देती तब तो ये सब रोग आ करके अब सोचते हैं अब क्या करें। प्रतिश्रुतम च ददामी इति वचन तन्नमृषा भवेत, मैंने तो वचन दे दिया है कि ददामी इति, मैं तुम्हारी मांग पूरी करूंगा, तुमको दूंगा, तो मेरी बात झूठी नहीं होनी चाहिए। और बधम ना रहती चंद्रोपी, और इंद्र का भी वध नहीं होना चाहिए, इंद्र भी वध के योग्य नहीं है। तो कश्यप भी सोच रहे हैं कि मेरी बात भी पूरी हो जाए और इंद्र का वध भी नहीं होना चाहिए, तो क्या करूं, तत्र इदम उत्कल्पते। तब उन्होंने सोचा ये बात होना चाहिए, ये बात होनी चाहिए, सोच लिए तुरंत। बहुत बड़े मेधावी पुरुष हैं जो देवताओं के दैत्यों के समग्र सृष्टि के पिता हैं, तो उनको बात सोचते देर नहीं लगी कि मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, संसार में स्त्री से, पुत्र से, भाई से, मित्र से कई तरह के संबंध हैं, तो शास्त्र यह नहीं कहता है कि सबका तिरस्कार कर दो। जैसे मैं यहां वर्णन कर रहा हूं तो वर्णन का यह अर्थ नहीं है कि इनमें दोष बुद्धि करके उनका त्याग कर दिया जाए। जैसे कल कथा आई थी, जब कैकेयी नहीं मानी, अपने वचन पर अड़ी रही, तो राजा दशरथ ने यहां तक कह दिया ठीक है तुम अभी जाओ, उठो यहां से और हमारे आंखों के सामने मत आओ, जाओ उठो और जीवन में कभी मेरे साथ बात मत करना। लेकिन इतना तीखा, इतना बिटर व्यवहार स्त्री के साथ हो, यह उचित नहीं है। हुआ क्या कि दशरथ जी मर गए और कैकेयी की वो दशा हुई। वो तो भगवान में प्रेम था दशरथ जी का, लेकिन मान लीजिए अगर भगवान की जगह कोई साधारण बेटा होता तो कितनी बड़ी दुर्गति थी दशरथ जी की। वो तो भगवान में प्रेम था इसलिए सब ठीक हो गया, लेकिन क्या किया जाए। स्त्री के साथ, पत्नी के साथ खास करके पुरुष का बहुत गहरा संबंध होता है और जीवन भर साथ रहना होता है, तो उसको कैसे रखा जाए, कैसे मेल करके रखा जाए, कैसे कॉम्प्रोमाइज करके रखा जाए, इस विषय में कश्यप जी दृष्टि दिए। कश्यप जी का जो स्टाइल है, विधि है, वो सीखने लायक है। देखिए, परिवार में झगड़ा है, इंद्र का वध चाहती है और पति से ही मांग रही है, दूसरा पुत्र चाहती है, कश्यप जी क्या करे क्या करे, इन्होंने इतना अच्छा रास्ता निकाला। देखिए किसी भी स्थिति में, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, चाहे पुत्र हो या पति हो, कोई भी हो, सबके लिए एकमात्र शरण भगवान श्री कृष्ण है। और किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। कश्यप जी इस स्थिति में भगवान की शरण लिए और अपने ऐसे दूषित अभिप्राय वाली पत्नी को भगवान की भक्ति में लगाएंगे। उन्होंने सोचा, तत्र इदम उपकल्पते, उन्होंने सोचा कि यह ठीक है। क्या ठीक है? उन्होंने सोचा कि इंद्र का वध तो होना ही नहीं चाहिए, इंद्र जान मारने योग्य नहीं है, और मेरी बात भी झूठी नहीं होनी चाहिए। तब उन्होंने ये सोचा, जैसा आगे वर्णन आएगा, कि उन्होंने सोचा कि आखिर चित इतना गंदा है, चित में इतना कठोर भाव भरा हुआ है, काम क्रोध लोभ भरा हुआ है, ये जाएगा कैसे? केवल हम आज कह दें कि बस हमसे बोलो मत, जाओ ये करो, ये तो कोई समाधान नहीं है ना। राजा दशरथ ने कोई समाधान नहीं किया, बस जाओ हमसे बोलो मत, ये मत करो, ये मत करो, मुंह मत दिखाओ, ये तो कोई समाधान नहीं है। मान लीजिए किसी की पत्नी है, बेचारे के मन में कुछ दूषित अभिप्राय है, कठोर भाव है, ये चाहिए, ये चाहिए, लेकिन उसको कह देना हमसे नहीं होगा और तुम जाओ दूसरे के पास, दूसरे से विवाह कर लो। मान लीजिए कोई क्रोध में ऐसा कह दे, तुम हटो जाओ, हमसे नहीं हो सकता और हमें तुमसे बोलना नहीं है, आज ही डिवोर्स ले लो। मान लीजिए ये कहे, ये तो कोई समाधान नहीं है, ये समाधान नहीं है। मनुष्य को, खास करके जो पति है, उसको इतना दक्ष होना चाहिए कि आखिर इस बेचारी ने मेरी शरण ली है, माता पिता को छोड़कर, भाई को छोड़कर के मेरी शरण में आई है, तो मुझे इसे उचित शरण में डालना चाहिए, जिससे इसकी इच्छा पूरी हो सके और इसके जीवन में जो दोष है वो भी चला जाए। तो वह केवल हो सकता है भगवान विष्णु की शरण लेने से। कश्यप जी इस बात को जानते थे। आपने पढ़ा होगा, कुछ वैष्णवों ने पढ़ा होगा कि अदिति ने भी ऐसा ही प्रपोजल रखा था कश्यप जी के पास कि मेरे पुत्र राजा होना चाहिए, इस समय असुर लोग राजा है, स्वर्ग का शासन छिन गया है मेरे पुत्रों का। वो रोने लगी और इंद्र को राजा बनाना चाहती थी। उसमें बलि महाराज राजा हो गए थे स्वर्ग के, जो दिति के वंश में जन्मे थे। खूब रो रही थी। पहले तो कश्यप जी ने कहा कि ओहो, ये सारा जगत स्नेह में बंधा हुआ, कौन किसका पति है, कौन किसका पुत्र है, लेकिन देखो माया, आखिर इस समय जो स्वर्ग का राजा है वो भी किसी का बेटा ही है ना। कश्यप जी ये सोच रहे थे। जैसे मान लीजिए आज के युग में कोई भी व्यक्ति जो सत्ता रूढ़ है, सरकार में है, वो भी किसी का बेटा है ना। इस भाव से वो नहीं सोच रही थी अदिति, सोचती थी हमारा बेटा इंद्र राजा होना चाहिए, इंद्र राजा होना। और रोने लगी कश्यप जी के पास। कश्यप जी उसको भी ऐसे ही भगवान की शरण में डाले। अच्छा, इसके लिए तुम पवव्रत करो, भगवान विष्णु की आराधना करो, ये प्रभु तुम्हारा मनोरथ पूरा करेंगे। तो उसने व्रत किया और उसे भगवान वामन देव जन्म लिए और बलि से राज्य मांग कर इंद्र को दे दिए बहुत आसानी से। कितनी सुंदर बात कश्यप जी ने कहा अपनी पत्नी को। और वो अगर मान लीजिए कहते कि ठीक है, मैं भी सेना इकट्ठी करता हूं, अपने पुत्रों का बल बढ़ाऊंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, और बलि से युद्ध होगा, काम बिगड़ जाता। बलि इतने कमजोर नहीं थे कि युद्ध में उनको हराया जा सकता। इंद्र आदि अपने आप स्वर्ग छोड़कर भाग गए थे उनको देख करके, क्या लड़ते थे। तो किसी को भी, चाहे अपनी पत्नी हो या पुत्र हो या भाई हो या अपना संबंधी हो, कोई भी हो, उसको कृष्ण से, भगवान से जोड़ना चाहिए, तो उसकी शुद्धि भी हो जाती है और शांति भी रहती है, बाद में तो मुक्त हो ही जाता है जी। ये उपाय है। इस विषम परिस्थिति में कश्यप जी ने सोचा, यदि भगवान के व्रत में मैं इसको लगाऊंगा बहुत काल तक, साल भर उन्होंने सोचा कि कम से कम एक साल तक मैं इसको ऐसा व्रत बताऊंगा, जप करने का, हवन करने का, भागवत पढ़ने का, स्तोत्र पढ़ने का, भगवान की आरती करने का, किसी से बात नहीं करने का, झूठ नहीं बोलने का, गाली नहीं देने का, एक व्रत आएगा जिसका वर्णन किया जाएगा। तो ऐसा करने से इसके हृदय की जो गंदगी है, कठोर भाव है इंद्र के प्रति या किसी के प्रति, वो निकल जाएगा, ये शुद्ध हो जाएगी और इंद्र का वध भी नहीं हो पाएगा। और जो बच्चे होंगे, जो बच्चा होगा गर्भ में, वह भी भगवान का भक्त होगा, क्योंकि माँ भक्ति कर रही है। कश्यप जी ये सोच रहे हैं। ऐसा सोच करके उन्होंने स्वीकार किया, कहा इति संचिंत भगवान मारीच कुरुनंदन। मरीचि के पुत्र कश्यप जी समर्थ व्यक्ति हैं, हे कुरुनंदन, हे परीक्षित, उन्होंने यह कहा, बोले तो अभी कुछ कुपित थे, दीति पर क्रोध आ रहा था, पूरा क्रोध में नहीं थे, लेकिन एकाएक जो उसने नाटक किया था, पहले इतना प्रेम दिखाई और इसके बाद इंद्र का वध करने वाला पुत्र चाहिए, तो कश्यप जी ईषत कुपित, कुछ कुपित थे उसके प्रति। ईषत मतलब कंट्रोल के भीतर ही क्रोध था, बाहर नहीं था। थोड़ा क्रोध हुआ पत्नी के इस अकस्मात बदले हुए व्यवहार पर, लेकिन उससे ज्यादा अपने को धिक्कार रहे थे। आत्मानम च बिगर है, अपनी निंदा करते, सोच रहे थे अपने मन में कि अरे बाप रे बाप, मैं ये सोचता था कि मैं विद्वान व्यक्ति हूँ, मैं जितेंद्रिय हूँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे जैसा गया बीता आदमी कोई नहीं, अपना दोष देख रहे। यह कह करके उन्होंने वैष्णव व्रत बताया। भगवान विष्णु के जो व्रत हैं, जैसे जप करना या आरती करना, भगवान की अर्चना, अर्चा विग्रह की आरती करना, प्रसाद खाना, बात नहीं करना, और भी कई तरह से सुनना, कथा पढ़ना, ये जो व्रत हैं आत्मा को बिल्कुल शुद्ध कर देते हैं। इनका अपना प्रभाव होता है, दिव्य अपना प्रभाव होता है। वस्तुगत वस्तुगत वस्तु में जो भाव होता है, जो उनकी विशेषता होती है, हमारे भाव की अपेक्षा नहीं करती है। भले गलत भाव से भक्ति की जाए, लेकिन अगर विष्णु की भक्ति की जाती है तो हमारे गलत हृदय को शुद्ध कर देती है। इस वस्तु का प्रभाव है अपने आप। जैसे बताया गया है कि अगर स्वाति नक्षत्र का बूंद बादल से गिर करके यदि सीपी में पड़ता है समुद्र में, तो मोती हो जाता है। केवल उस वस्तु के टच होते ही मोती हो जाता है। या जैसे गंगा जी में कोई नाला गिरे किसी शहर का, तो गंगा जी के जल का स्पर्श होते ही वो स्वयं गंगा जल हो जाता है। गंगा जी अशुद्ध नहीं होती, वह अशुद्ध पानी ही परम पावन हो जाता है। तो भगवान विष्णु इतने पावन हैं, इतने दिव्य हैं, अलौकिक स्पिरिचुअल हैं, परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान, कि उनके संपर्क में आने पर कितना भी बड़ा से बड़ा पापी शुद्ध हो जाता है। कश्यप जी सिद्धांत को जानते थे, तो अपनी पत्नी को लगाए, यह नहीं कहे कि तुम गलत सोच रही हो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तुम शुद्ध हो जाओ। शुद्ध कैसे बेचारी होगी, कैसे शुद्ध होगी? कोई शुद्ध होने वाला काम किया जाएगा तब शुद्ध होगी ना। कुछ लोग कहते हैं अरे क्या हरे कृष्ण करते रहते हो, भाई पहले तो शुद्ध बनो, शुद्ध बनो, शुद्ध आचरण करो, इसके बाद भगवान का नाम लो। ये तो ऐसे कहना है जैसे किसी रोगी को ऐसे कहिए क्या दवा खाओगे, पहले रोग दूर करो तब दवा खाओ, ऐसे कहें, ये क्या बुद्धिमानी है। दवा खाएगा तभी तो शुद्ध होगा ना। सारे जीव अनेक कामनाओं से भरे हुए हैं, उनकी कामना को छोड़ने के लिए आप कहेंगे तो हतोत्साहित हो जाएंगे, वो नहीं छोड़ेंगे। पर ये आप सिखाइए कि तुम हमारी कामना को विष्णु पूरा करेंगे, कृष्ण पूरा करेंगे, तुम उनकी शरण लो, प्रभु सर्व समर्थ हैं, लक्ष्मीपति हैं और सबके सुहृद हैं, वो तुम्हारा मनोरथ पूरा कर देंगे, तुम करो। तो भगवान मनोरथ पूरा कर देते हैं, बल्कि वो जितना चाहता है उससे और ज्यादा देते हैं और प्रसाद बना करके देते हैं और हृदय की शुद्धि भी कर देते हैं, सब काम हो जाते हैं। यही सोच करके कश्यप जी अपनी पत्नी दीति को ये पूर्ण समन व्रत में नियुक्त किए साल भर के लिए। यह दक्षता चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि अब बस अगर हम स्त्री का दोष सुन लिए तो आज से बस दूर रह गए। दूर क्या रहोगे? आज एक भक्त हमसे कहे कि तो बहुत अच्छी कथा हुई, ब्रह्मचारियों को केवल ब्रह्मचारी रहना चाहिए और वानप्रस्थी को संन्यास लेना चाहिए, संन्यासी को और दृढ़ होना चाहिए, और गृहस्थों को वानप्रस्थ लेना चाहिए। वो कहा है एक भक्त का, मैं कहा नहीं नहीं, कथा का ये उद्देश्य नहीं है, कथा का ये उद्देश्य नहीं कि अब आज स्त्री पुरुष में जो प्रेम है वो विखंडित हो जाए कि नहीं नहीं तुम तो दोष की खान हो, ये हो, और तुम तो केवल गुणों की खान हो ना। तो आज स्त्री छोड़ दो, स्त्री छोड़ दी, अब दूसरी स्त्री पर निगाह डालो, तो ये तो महाभयंकर नरक में गिरे ना, ये तो नरकगामी होने का रास्ता खुल गया ना। वो तो ऐसा जैसे आत्मा देह नहीं है, लेकिन देह जब तक है तब तक तो इसके साथ कंप्रोमाइज करके रहना है ना, कि आज ही देह को त्याग देंगे। आत्मा देह नहीं है, भिन्न है, चाहे हमारे शरीर में हाथ पैर है, मान लीजिए आंख में कुछ दर्द है, जो कुछ थोड़ा फिर से घाव हो गया तो आंख निकाल कर फेंक देंगे क्या? आंख के रोग को ठीक करेंगे कि आंख को पिक आउट कर देंगे, बताइए? जब भगवान ने सहज संबंध बनाया है, पत्नी बनाया, विवाह किए, पत्नी हुई, उसी के साथ रहना है, बच्चे जो होते हैं वो माता पिता के हृदय का प्रकाशन होते हैं, वो उनकी धरोहर को, उनकी परंपरा को बाद में ढोते हैं। देखा गया है कि जितना सुचारू रूप से पुत्र अपने पिता के नियमों का निर्वाह करता है, उतना दूसरे लोग नहीं कर पाते हैं, देखा गया है। तो इस संबंध को सुधार करके ठीक से चलाने के लिए कथा है, इसके लिए नहीं है कि बस छोड़ो, ये करो, वो करो, ऐसा करो। जैसे कश्यप जी कर रहे हैं वही करना चाहिए। उन्होंने मदद की अपने पत्नी की, व्रत करने में उनको बाजार से कुछ सामान लाना पड़ा होगा, कोई भी चीज चाहे अगरबत्ती लावे, फूल लावे, समेत कुछ सब सब कुछ जुटाए और कहे कि तुमको कोई काम नहीं करना है, 24 घंटा आराधना करना है। और सबसे पहले उन्होंने बताया क्या नियम में, जो पूछी है कि नियम बताइए, नियम बताइए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कौन सा कार्य करने से व्रत में विघ्न नहीं आएगा, मेरा बेटा अजर अमर होगा और इंद्र का वध कर देगा, वो बताइए। तो कश्यप जी ने एक शब्द भी नहीं कहा अपनी पत्नी से कि तुम क्यों इंद्र का वध करना चाहती हो, ठीक नहीं है ये, नहीं ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा ठीक है, तुम जो चाहती हो पूरा होगा, मैं एक व्रत बता रहा हूं, इसको करो, साल भर करना होगा। तो बड़े उत्साह से बोली, धारिष्ये व्रतम ब्रह्मा, ठीक है मैं साल भर व्रत धारण करूंगी, बताइए बताइए। इतना जोश था, जब उस किसी की कामना के पूर्ति के लिए प्रोमिस किया जाता है तब व्यक्ति का उत्साह बढ़ता है कोई साधन करने में। आप अगर कामनाओं से भरे हुए जीवों को ये कहे नहीं नहीं निष्काम भाव से भगवान का भजन करना चाहिए, तो निष्काम भाव से घर में रहेगा, भजन क्या करेगा, ठीक है चलने दो। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध के पास उनके मठ में एक व्यक्ति आया, बहुत भूखा था कई दिन का, तो आया तो बौद्ध भिक्षुक लोग उसे लगे कुछ धर्म का उपदेश करने, उपदेश करने, लेकिन वो सुन नहीं रहा था, ग्रहण नहीं कर रहा था। तो उन लोगों ने जाकर भगवान बुद्ध से कहा कि एक ऐसा व्यक्ति आया है जो हमारे उपदेश को ग्रहण नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं सुन रहा। तो भगवान बुलाए उसको और सबसे पहले उन्होंने पूछा कि तुम प्रसाद खाए हो, भोजन किए हो? उसने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा पहले इसको भोजन कराओ। भोजन करने के बाद वो व्यक्ति ठीक से सुना और वह भी मठ ज्वाइन कर लिया और वो बहुत बड़ा व्यक्ति बना बौद्ध धर्म को ग्रहण कर। तो जो जिसकी इच्छा है अगर इच्छा पर व्याघात डालिए तो व्यक्ति कृष्ण की शरण में नहीं आएगा, भगवान की शरण में नहीं आएगा। जहां उसे यह आश्वासन मिलेगा कि यहां पर तुम्हारी इच्छा पूरी होगी भले हो या ना हो, तो वहीं जाता है। विष्णु के अलावा कोई देवता देवी में कोई शक्ति नहीं है मनोरथ पूरा करने की, कोई नहीं। कश्यप जी इस सिद्धांत को जानते हैं, ध्रुव महाराज को भेजा नारद जी ने कि विष्णु की शरण में जाओ, भजन करो मधुबन में, और उन लोगों को बहुत बहुत धन मिला। जो लोग ये सोचते हैं कि इसकी आराधना करें, इसकी आराधना करें, उससे मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा धन या आयुष्य या सौभाग्य, सफलता, जो कुछ भी, वो विष्णु की, कृष्ण की शरण में आने से मिलता है। ये शास्त्र डंके की चोट इस बात को कहता है। अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदार दे तिव्रेण भक्ति जोगे न जजेत पुरुषम परम। सर्व काम, अगर सब प्रकार की इच्छा है, सब प्रकार की कामना है, तो भगवान कृष्ण का ही भजन करना चाहिए, वही पूरा करते हैं। और वो जितना देते हैं उतना कोई दे नहीं सकता। देवता लोग देते हैं तो दम निकल जाता है इनका, पछताते हैं कि इतना क्यों दे दिया, और थोड़ा देते हैं। आप अगर देवताओं को बेल फल के बराबर देंगे, भजन करेंगे, तो तब ये सरसों के बराबर देते हैं, मस्टर्ड सीड के बराबर देंगे, ये हिसाब है उनका। उनके पास है ही नहीं, कुछ कंगाल है, देंगे क्या। श्रीपति देते हैं, वास्तव में विष्णु देते हैं, इतिहास बताता है, जिसको दिया वो निहाल हो गया। और देते हैं तो शुद्ध भी कर देते हैं, अपने भक्तों के हृदय को काम क्रोध लोभ आदि से शून्य कर देते, साफ कर देते हैं और देते हैं। कश्यप जी देवताओं के पिता हैं, अपनी पत्नी को वे विष्णु का भजन करने के लिए उपदेश कर रहे हैं, न कि ये कह दिए कि जाओ इधर जल दो, उसकी आराधना करो, वहां सप्ताह में एक दिन घूमाओ, वहां ये करो ये करो, नहीं। जीव के वास्तविक हितैषी, वास्तविक बंधु, वास्तविक स्वामी भगवान श्री कृष्ण है, उन्हीं की शरण लेनी चाहिए। देखिए उससे हुआ क्या, दीति इतना शुद्ध हो गई स्त्री भगवान का जप करने से, कि इंद्र को उसने 49 पुत्र दिया, जिसको मारने के लिए पुत्र चाहती थी उसी को अपने पुत्रों को दे दी, कही कि बेटा मैं नहीं चाहती हूं कि ये मेरे पुत्र असुरों के समाज में रहे, तुम ले जाओ इनको देवताओं के समाज में। तो इंद्र के साथ में रहते, इंद्र भी नहीं मरे, वो बच्चा भी नहीं मरा, इंद्र ने मारा गर्भ में, वो कथा आएगी। तो इंद्र ने गर्भ में मारा, लेकिन वो बच्चा जो था 7 बच्चा के रूप में हो गया, 6 धार है वज्र में, 6 जगह काटे, तो इसलिए 7 टुकड़ा हुआ, 7 टुकड़ा ओरिजिनल बच्चे की तरह हो गया। इंद्र तो डर गया, अरे बाप ये क्या हो रहा है। तो फिर एक एक पर मारे 7 पर, तो फिर 7-7 टुकड़े होकर 49 हो गए ओरिजिनल बिल्कुल। तब इंद्र डर गए कि वो मैं नहीं मार पाऊंगा, ये मरेंगे नहीं। तो उन बच्चों के साथ वे दीति के सामने प्रकट हुए, मां के सामने। तो 1 साल तक निरंतर कृष्ण का जप करने के कारण, भक्ति करने के कारण वो दीति परम शुद्ध हो गई थी। इंद्र को देखते ही बहुत प्रसन्न हुई और 49 पुत्रों को, तो पूछती है बेटा, इंद्र से कहते है बेटा मैं तो 1 पुत्र का संकल्प की थी जो तुम्हारा वध करने के लिए, तो ये 49 कैसे हो गए। तो भगवान इंद्र कहते हैं कि माँ सीधा कहते हैं, माँ जब से तुमने ये संकल्प लिया कि मेरा वध करने वाला पुत्र चाहिए, तब से तो मेरा होश उड़ गया, मैं सुख से नहीं सोया। तो मैं छल कपट से तुम्हारा सेवक बन करके तुम्हारे व्रत में कमी ढूंढ रहा था, जिस दिन कमी होगी तो मैं गर्भ को मार दूंगा। तो एक दिन तुम बिना खाए पिए सो गए, बिना मुंह धोए सो गए, बिना पैर धोए सो गए, जूठे मुंह। तो मुझे अवसर मिला तो मैं अपने जोग बल से तुम्हारे मुख में प्रवेश किया और गर्भ में गया और वज्र से मारा। माँ जो स्वार्थी व्यक्ति होता है वो धर्म पर दृष्टि नहीं रखता है, मुझे माफ करना, मैं तो जीना चाहता था और तुम मुझे मारने के लिए पुत्र चाहती थी। तो जब मैं मारा इस तरह से तो बच्चा मरा नहीं, फिर 49 हो गया, मैं समझ गया कि भगवान की पूजा का ये प्रभाव है, बच्चा मर नहीं सकता, ये इतिहास। जब बिना छल के इंद्र ने बात किया, जब बिना छल के माँ ने बात किया बेटा कह करके, उसी व्यक्ति को जिसको मारने के लिए पुत्र चाहती थी, आज स्नेह उमड़ गया इंद्र के प्रति। बेटा कहती है और कहती है ये तुम्हारे भाई हैं, इनके साथ तुम 50 हो, तुम ले जाओ इनको स्वर्ग ले जाओ। ये जन्म है, ये प्रसंग में यही दिखाया गया है कि चाहे हृदय में कुछ भी दोष हो, वह व्यक्ति भगवान कृष्ण का भजन करने में अयोग्य कभी नहीं है, वो योग्य है, क्योंकि स्वरूपगत अधिकार है जीव का कृष्ण की शरण में आने के लिए। जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण के साथ ही संबंध को कोई रोक नहीं सकता है, कोई काल, कोई देश, कोई परिस्थिति। कितने भी पाप की भूमिका पर व्यक्ति हो, कितना भी पापी हो, लेकिन कृष्ण को प्रभु नाथ स्वामी कहने का उसका सहज अधिकार है। जैसे मान लीजिए कोई पुत्र है, पुत्र आज भारत में है, अगर वो दूसरे देश में चला जाए या कोई पुत्र जेल में भी चला जाए, नरक में जाए, कहीं जाए, तो पिता को पिता कहने का उसका राइट है, बर्थ राइट है ना। कहीं से भी कह सकता है अपने पिता को पिताजी। तो कहीं किसी भी स्थिति में जीव हो, धनी हो, गरीब हो, रोगी हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबका सहज राइट है, सहज अधिकार है कृष्ण को अपना प्रभु कहने का। वही हमारे रक्षक हैं, वही हमारे मनोरथ को पूरा करेंगे। तो किसी भी इच्छा के साथ, बुरी से बुरी इच्छा के साथ भगवान का भजन किया जा सकता है। इसमें कोई प्री शुद्धि की जरूरत नहीं है, पहले ये शुद्ध हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। कभी कभी कोई भक्त पूछते हैं कि क्या बिना नहाए हम भगवान का नाम जप सकते हैं? क्यों नहीं जप सकते हैं? बिना नहाए सांस ले सकते हैं और जप नहीं कर सकते? सांस जितना ले रहे हैं उससे भी ज्यादा स्वाभाविक है कृष्ण की भक्ति करना। हाँ, कुछ पाबंदी है भाई, जब तुम्हें डीटी की सेवा करनी है, मूर्ति की सेवा करनी है, तो देवो भूत्वा देवम जय, तुम्हें नहा धोवा कर जाना चाहिए। नहा लेने से डेढ़ा उत्साह रहता है। लेकिन मान लीजिए आप नहाए नहीं है, आधी रात को नींद खुली, 4 बजे खुली, 3 बजे खुली, तो भगवान का नाम लेना एक महामंगल है, ले सकते हैं। उसमें कोई नियम नहीं कि नहीं नहा लेंगे तब नाम का उच्चारण करेंगे, नहीं। गायत्री आदि का उच्चारण नहा करके करना चाहिए, उसमें कुछ नियम है, लेकिन भगवान के नाम में तो कोई देश काल नियम नहीं, सर्व सिद्धि है। खाईते सुईते जथा तथा नाम लय, खाते समय, यहां तक कि सोते समय भी हरे कृष्ण कर सकते हैं। खाते समय, सोते समय, नहाते समय, छींकते समय कभी भी भगवान का नाम लिया जा सकता है, क्योंकि भगवान के नाम को लेने का हमारा स्वरूप है, हमारा वही अधिकार है, वास्तव में वही अपने हैं। तो चाहे इच्छा पूरी करने के लिए, चाहे निष्काम भाव से, जैसे तैसे उन्हीं का भजन करना चाहिए। कश्यप जी के द्वारा इस विषम परिस्थिति में यह शिक्षा दी जा रही है। वास्तव में ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें मतैक्य हो, ये कहीं मत हो सबका, कुछ न कुछ भेद जरूर होता है। पुत्र कुछ दूसरे तरफ चलता है, कुछ न कुछ चलता है, पत्नी के भी कुछ मनोरथ होते हैं, भाई के भी होते हैं, पिता के भी होते हैं। कैसे कॉम्प्रोमाइज किया जाए, ये कहीं धरातल है कि जैसे भी हो कृष्ण से जोड़ा जाए उसको। अगर किसी में बहुत बड़ा दोष भी है तो उसको सुधारने का उपाय क्या है? उपाय यही है कि उसको कृष्ण से जोड़ा जाए, कृष्ण के नाम से, कृष्ण के कथा से, कृष्ण के भक्तों से, कृष्ण के मंदिर से, इस तरह से उसे जोड़ा जाए, जोड़ा जाए। उसका तिरस्कार करने से, छी मानस करने से तो सुधार होगा नहीं। अब पत्नी इतनी कठोर अभिप्राय वाली है इस समय दीति, कश्यप जी कितनी चतुराई से काम किए, कितनी बुद्धिमानी से भगवान में लगा दिया उन्हें सहज। वो जप करती थी, सबसे पहले उन्होंने बताया था न हिंस्यात भूत जाता नहीं। कश्यप जी ने बताया कि साल भर तुमको किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, चींटी की भी। तो समझ नहीं रही थी वो क्या कर रहे, प्रकारांतर से उनके कहने का अर्थ है कि जब चींटी तक की हत्या नहीं कर सकती, किसी को दुख नहीं दे सकती, तो इंद्र को कैसे मारना चाहती। पति ने इस तरह उपदेश किया, और न सपेत न नृतम बदेत, उन्होंने कहा कि साल भर जब तक व्रत चले तब तक तुम्हें एक बार भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसका अर्थ नहीं कि व्रत खत्म होने के बाद अब फ्री हो गई झूठ बोलने के लिए। ये तो जो झूठ बोलने के लिए उत्कंठित रहते हैं वो सोचेंगे कि कब व्रत पूरा होगा कि हम खुल करके झूठ बोलेंगे। एक बार हमारे गांव में मैं देखा, दो लड़कों में झगड़ा हो रहा था, तो एक लड़का गाली दे रहा था, गाली दे रहा था, तो दूसरा व्यक्ति, दूसरा बच्चा था, वो गाली नहीं दे रहा था, गाली देना जानता था लेकिन नहीं दे रहा था। बाद में वो कहा कि देखो मैं भी गाली दे सकता हूं। कैसे गाली देगा? तो तुरंत कंठी खोलकर रहकर गाली देने चालू कर दिया। कंठी को खोला और गाली देने लगा। इसका मतलब कंठी बांध करके गाली नहीं दे सकता। और इसके बाद पहन लिया पूरा। व्रत तो ये जो व्रत बताया जा रहा है वास्तव में व्यक्ति को जीवन भर धारण करना चाहिए, न सपेत न निर्तन बदित, किसी को गाली नहीं देना, साप नहीं देना, शुभ वचन बोलना चाहिए। शुभ वचन जैसे आजकल के लोगों को सिखाया जाता है शुभ वचन बोलने को। हम लोग एयरपोर्ट पर जाते हैं, टिकट लेते हैं, बोर्डिंग पास लेते हैं, तो वो लोग बोलते हैं अमेरिका में पूरा हैव ए ग्रेट डे, इतना अच्छा लगता है सवेरे सवेरे कोई कहे कि हैव ए ग्रेट डे, हैव नाइस जर्नी, बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से किसी भी व्यक्ति के लिए शुभ वाक्य बोलना चाहिए। किसी को कठोर बोल देना, साप दे देना, ये कर देना, ये बहुत बुरा है। संसार ऐसे ही दुख से भरा हुआ है। जब बोलना है तो बहुत सुंदर वचन बोलना चाहिए। भक्त का एक लक्षण है ये, कभी कठोर नहीं बोलना। एक बार एक व्यक्ति जा रहा था यह प्लेन से, झगड़ा हो गया उससे, तो जिसे झगड़ा हो गया वो कहता है भगवान तुम्हारा प्लेन क्रश कर दे, तुम्हारे कहने से थोड़े क्रश हो जाएगा वो। हमारे यहां कहते हैं क्या, गिद्ध के श्राप देने से गाय थोड़े मरेगी। गिद्ध साप दे, भूखा बैठा है गिद्ध और गाय को साप दे के मर जाए तो उसके साप देने से तो मरेगी नहीं, जो होना है वही होगा, लेकिन तुम जो गलत बात बोले वो तो कर्म बंधन लग गया। तो कर्म फल, कर्म वचन, मन से कर्म होता है, शरीर से, वचन से, मन से, तो वचन से बोला तो लग गया, उसका तो कुछ होगा नहीं, लेकिन जो व्यक्ति बोला कि ऐसा हो जाए तो उसी दिन कर्म बंधन लग, वो तो कंप्यूटराइज्ड है बिल्कुल, वो तो आएगा फल समय पर। इस प्रकार कश्यप जी बहुत ही सफलतापूर्वक अपनी पत्नी को भगवान के भजन में लगाए, यह उदाहरण है। इस तरह से शुद्धि होती है। कर्दम मुनि की पत्नी देवहूति जी इसी तरह से शुद्ध हुई। पहले उन्होंने मांगा कि हमको पुत्र चाहिए, हमारा शरीर स्वस्थ कीजिए, हमको खिलाइए पिलाइए अच्छा से और एक घर बनाइए, यही मांग किया। उन्होंने कभी क्रिटिसाइज नहीं किया अपने पत्नी का कि नहीं नहीं तुमको भी जैसे मैं हरे कृष्ण कर रहा हूं वैसे ही तुम भी करो, ये क्या मांग रही है, वन में पेड़ के नीचे रहो, भगवान का भजन करो, क्या दुनियादारी बसाना है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, ठीक है प्रिय। उन्होंने विमान रचा तो पत्नी के लिए घर बनाया, पत्नी के लिए और किया, घुमाया फिराया, सब किया, संतान दिया, लेकिन जब घर छोड़ करके वो जाने लगे तब वो रोने लगे कि आपने हमको सब कुछ दिया लेकिन भक्ति नहीं दिया, हमको भगवान की कथा सुनाने वाला हमको पुत्र चाहिए। सीधा कहा, आप वन में चले जाएंगे तो मुझे कौन तारेगा, मेरा उबार कौन करेगा। तो कर्दम जी कहते हैं, प्रिय तुम अपने प्रति चिंता मत करो, तुम्हारा उद्धार करने के लिए साक्षात भगवान तुम्हारे गर्भ से आएंगे। इस तरह से तो वह स्त्री जो पहले केवल घर चाहिए, हमारा स्वास्थ्य सुधरना चाहिए, हमारे लिए और भी चाहे, हमको संतान चाहिए, यही इच्छा थी, ये स्वाभाविक इच्छा है किसी स्त्री के लिए। लेकिन एक दिन वही देवहूति भगवान के साथ कथा सुन रही है और इतना शुद्ध महिला हुई, भगवान की मां बनी। तो इस तरह से जिसकी जो कामना है उस कामना की पूर्ति के लिए ही कृष्ण के शरण में भेजना चाहिए। ठीक है ये कामना है, तुम आओ ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, ये जप करो, भगवान का प्रसाद खाओ, भगवान को प्रणाम करो, कृष्ण तुम्हारे हैं, कृष्ण तुम्हारे हैं, तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। इस तरह से कश्यप जी ने दीति को लगाया भगवान के भजन में। तो कहते हैं उन्होंने शर्त रखा, कश्यप जी ने कहा कि पुत्रस्ते भविता भद्रे इंद्रहा देव बांधव सांवत्सरम व्रतमिमं जदंजो धारयिष्यसि। हे प्रिय देखो मैं ये व्रत बताया तुमको, ये व्रत बता दिए उन्होंने, यानी यहां बताया नहीं गया है, इसको 19वें अध्याय में महाराज परीक्षित के प्रश्न के उत्तर के रूप में सुखदेव गोस्वामी बताएंगे, लेकिन उसी बात को कश्यप जी ने पूरा बता दिया यहां, इसलिए इदम कह रहे हैं देखो पुत्रस्ते भविता भद्र इंद्रहा देव बांधव संवत्सरम व्रतम इदम यदि अंजो धारयिष्यसि। यदि इस व्रत का पालन करोगी, उन्होंने प्रवचन किया पूरा कैसे भगवान की पूजा करनी है, कैसे हवन करना है, कैसे प्रणाम करना है, करना है मंत्र जपना है, स्तोत्र पढ़ना है, ये उन्होंने बताया जो 19वें अध्याय में आएगा। तो बता करके कहा कि यदि तुम साल भर तक बिना त्रुटि के पूरा पूरा इस व्रत का पालन करोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र इंद्रहा होगा, इंद्र का वध करने वाला होगा। तो इंद्र हा हा का अर्थ होता है मारने वाला, और हा अनुगत्य च हा का अर्थ होता है अनुगामी, दोनों। तो अपने मन में वे अर्थ रख रहे हैं कि अगर साल भर तुम व्रत करोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र का अनुगामी होगा अपने मन में, लेकिन दीति के मन में ये भाव भर रहे कि इंद्र का वध करने वाला होगा, वो ये समझ रही है। और उन्होंने बोलते समय देव बांधव शब्द अलग बोला, लेकिन दीति समझ रही है कि अदेव बांधव बोल रहे हैं, संधि करके बोल रहे हैं, इंद्रहा अदेव बांधव अगर एक में बोला जाए तो। अदेव मतलब असुर, देवताओं के जो बैरी हैं, दैत्य हैं, उनका बंधु होगा तुम्हारा पुत्र, उसके दृष्टि में समझा रहे हैं। अदेव बांधव जो देवता नहीं है, असुर है, उनका बंधु होगा तुम्हारा पुत्र और इंद्र की हत्या करेगा, वो ये समझ रही है। लेकिन कश्यप जी अपना मनोगत अभीष्ट अर्थ ले रहे हैं कि यदि तुम साल भर व्रत का पालन करोगे, भगवान की भक्ति करोगी, तो तुम्हारा पुत्र इंद्र का अनुगामी होगा और देव बांधव होगा। उन्होंने उच्चारण ऐसे ही किया था, लेकिन वो बेचारी कम संस्कृत पढ़ी होगी, वो समझी नहीं, अब एक काम चला लिए। ऐसे समय समय पर बोला जाता है कि वो कुछ और अर्थ समझ ले, लेकिन उसका एक अर्थ रिजर्व रहे। कैसे कश्यप जी कह सकते थे कि तुम्हारा पुत्र इंद्र की हत्या करने वाला होगा या असुरों का बंधु होगा, कैसे कह सकते थे? लेकिन वह यही सुनना ही चाहती थी, तो उसको सुनाने के लिए, खुश करने के लिए, भगवान की भक्ति करे शुद्ध हो जाएगी, चलो कोई ना, इस तरह से उन्होंने कह दिया। और इतना जब उन्होंने कहा तो कहती है धारयिष्ये व्रतम ब्रह्मन् ब्रूही कार्याणि जानि मे, हे ब्रह्मन् मैं व्रत धारण करूंगी। इतना दृढ़ निश्चय था पुत्र प्राप्ति के लिए और इंद्र का वध करने के लिए, तैयार हो गई बिल्कुल। आजकल की स्त्रियों कहा जाए कि 7 दिन खूब जप करो तो कहेंगे अरे इतना दिन करेंगे, साल भर के लिए एकदम तैयार हो गई। और जो साल भर भगवान की भक्ति करेगा वो जीवन भर नहीं छोड़ सकता है, इतना भक्ति में रस है, इतना आनंद है, वो छोड़ नहीं सकता। तो कहती है धारे इसे व्रतम ब्रह्मन्, हे ब्रह्मन् मैं व्रत को धारण करूंगी। ब्रूही कर्जाणि यानि च, इसमें क्या क्या करना है ये पहले बताइए। कर्जाणि ब्रूही, ब्रूही जच्च निषिद्धामि, और जो इसमें मना किया गया क्या नहीं करना चाहिए उसको भी बताइए, मैं भूल करके वो नहीं करूंगी। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग इत्यादि, ये बताने का मतलब ये है कि इसमें क्या निषिद्ध है इसे भी बताइए। देखिये भगवान के व्रत करने के लिए अथवा जीवन शुद्ध करने के लिए ड्रिंकिंग फ्रिंकिंग बिल्कुल नरक जैसा छोड़ना चाहिए, ये पेशाब पीने से भी खराब है वास्तव में। जो लोग ये ताड़ी शराब पीते हैं, मदिरा पीते हैं, वास्तव में बहुत अपने जीवन को घोर नरक में ले जा रहे हैं। वो केवल शरीर को ही नहीं बुद्धि को भी नष्ट करता है। सब जगह लिखा भी हुआ है कि इसे हानि है, ये हानि है, लेकिन फिर भी लोग बुद्ध लोग पीते रहते, क्या करेंगे? इस शरीर के अंदर शराब डाल करके इसको अजर अमर कर लेंगे। शराब पीने का उस महापाप का जो फल है वो तो जाएगा आत्मा के साथ, अधोगति में ले जाएगा, शरीर भी जाएगा और शरीर में और रोगों की पुष्टि करके जाएगा। मैं एक बस पर पढ़ा कि सिगरेट पीने से, एक गुटखा खाने से ये रोग होता है, ये रोग होता है, तो प्रचार करते जाते हैं और फिर भी वो खाने वाले खा रहे हैं, क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं, मूर्ख हैं, आगे का अपना जीवन समझ ही नहीं रहे हैं कि हम कितना अपना गला काट रहे हैं अपने आप। भगवान की भक्ति में भोजन का पहला संबंध है, आगे इस प्रसंग में ये बात कही जाएगी। कुछ लोग कहते हैं जो सनातन धर्मियों के अलावा कि भक्ति में और भोजन में क्या संबंध है, कुछ भी खाओ भजन करो, गाय खाओ कुछ भी खाओ बस भजन करो, नमाज पढ़ो ये करो वो करो, ऐसा कैसे कर सकते हो? पहले शुद्ध बनना पड़ता है इसके लिए, भोजन की शुद्धि बहुत आवश्यक है। जैसा आदमी भोजन करता है वैसा मन बनता है, गलत आहार करके शराब मदिरा आदि पी करके कैसे कोई कंटिन्यूस चला ही नहीं पाएगा। ये बहुत जरूरी है आहार सुधारना पहले। तो ये कह रहे कि निषिद्धानी, पहले निषिद्ध बताइए कार्य क्या है, ये करना कैसे, पूजा करना पाठ करना ये करना वो करना क्या नहीं करना है, और ऊपर से और भी बात बताइए कि क्या करने से हमारा पुत्र नहीं मरेगा और मेरा व्रत पूरा होगा, व्रत में एक भी त्रुटि नहीं आनी चाहिए। यह है उत्साह, इस तरह का उत्साह होना चाहिए व्यक्ति में। किसी को कहा जाए कि भाई अरे भजन करो जप करो भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे, तो कहे कोई कहे कि हाँ जरूर करेंगे हम एक माला कर लेंगे, यही उत्साह है। एक माला कर रहे यही उत्साह है। अवश्य बात है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं करने वालों से तो बहुत अच्छा है, भगवान का एक नाम भी उच्चारित होने पर बहुत लाभ करता है, तो एक माला जप बहुत काफी है। लेकिन तत्वतः जो उत्साह में होगा तो कहेगा कितना जपना चाहिए ये बताइए, कितना जपना चाहिए, रिक्वायरमेंट होना चाहिए कितना जपना है, तो वो बताए कि इतना जपना है तो हाँ ठीक है जपेंगे। सब जगह यही होता है ना, आप कोई वस्तु लेने जाइए दुकान में तो दुकानदार दाम बताता है, ऐसा नहीं है कि आपकी इच्छा पर है कि भाई हम इतना ही देंगे, है ना, उधर से फिक्स्ड है कि नहीं इतना हम लेंगे इतना लेंगे इतना वो कहता है। लेकिन भजन सीखने में लोग कहते हैं हमसे तो इतना ही होगा, नहीं वो जितना कहता है उतना करो, जरूरी है कम से कम 16 माला तो करना चाहिए। अगर कदाचित नहीं कर पाए तो चलो एक माला दो माला चार माला पांच माला जो भी कर रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर करने की शक्ति है, शरीर स्वस्थ है और कोई बाधा नहीं है, उपद्रव नहीं है किसी प्रकार का, तो करने में क्या हर्ज है, लाभ ही लाभ है। दीति जैसा उत्साह रखना चाहिए, धार इससे व्रतम ब्रह्म, मैं व्रत धारण करूंगी, मैं नियम लूंगी, बताइए क्या करना है क्या नहीं करना है, और ऊपर से स्पेशल जो नियम हो हमारे व्रत को पूरा करने के लिए, गर्भ की रक्षा के लिए, वो सब बताइए, मैं करने के लिए तैयार हूं। इतना उत्साह उस स्त्री में है, और मर्द होकर के अभी एक माला करते और कुछ ना मर्द तो एक माला भी नहीं करते, सीखने की बात है ना। इतना भगवान ने समय दिया है, कहते हमको समय नहीं है, कुछ लोग कहते आई हैव नो टाइम, तो आपको केवल 22 घंटा 21 घंटा दिया है क्या, सबको तो 24 घंटा ही दिए ना भगवान, एक भक्त जो है उसको भी 24 घंटा ही दिया गया, ऐसा नहीं कि 24.5 घंटा उसको दे दिए और आपको 23.5 दे दिए ऐसा तो नहीं है, भगवान ने समय उतना ही दिया है। तो इस तरह से अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को भगवान से जोड़ना चाहिए, धीरे धीरे संसार सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा। अन्यथा कृष्ण के भक्ति के अलावा और कोई उपाय नहीं है शुद्ध करने का। यह इतिहास बताता है, वैदिक ग्रंथ बताता है कि बड़े बड़े लोगों ने यही किया, कश्यप जी ने अदिति को यही भजन सिखाया, दीति को भजन सिखाया, कर्दम जी ने अपनी पत्नी को भजन सिखाया, इस तरह से स्त्रियां महान पद को प्राप्त की हैं। यहाँ जो दोषों का वर्णन किया गया तो इसके लिए नहीं किया गया कि उनका त्याग कर दो, ये करो ये करो ये करो, सब असमंजस में फंसो, लेकिन किसी में कोई दोष है तो उस दोष से बचते हुए उसको भगवान के भजन में लगाना है, जिसे वो अपने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर सके, और इस तरह से समाज में शांति रहेगी भगवान की कृपा से। हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण।